24 दिसंबर का प्रवचन शुरू होता है।
को ब्रीफ में कैसे कहेंगे, शॉर्ट में? पहली ढाल की क्रीम। कोई पूछे कि पहली ढाल से आपने क्या शिक्षा ली, आप क्या समझे, पहली ढाल का पर्पस क्या है? और अच्छे से थोड़ा एक्सप्लेन करिएगा, आप कर तो रहे हैं थोड़ा सा। और भ्रमण की वजह से हम दुख पाते हैं, और भ्रमण का कारण हमारी अज्ञानता है। हम अपनी अज्ञानता की वजह से चारों गतियों में भ्रमण करते हैं, और इस भ्रमण के द्वारा ही हम दुख पाते हैं। और उन्हीं दुखों को यहाँ पर इंटरप्रेट किया गया है, ताकि हम समझ सकें कि हमने कैसे कैसे दुख पाए हैं, और उन दुखों का कारण अंततः हमारी ही अपनी अज्ञानता है। ये मुझे लगा कि पहली ढाल में हम शायद इतनी ही बात समझने की कोशिश करते हैं। दूसरी वाली ढाल में हम अपनी अज्ञानता से परिचय पाते हैं कि ठीक है, आपने कहा कि हमारी अज्ञानता है, हमें बताइएगा कि हम कहाँ मिस कर रहे हैं, कहाँ कंफ्यूज हम हैं, या कहाँ हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, ये बताइए। तब फिर दूसरी ढाल पूरी की पूरी, क्योंकि व्यक्ति तीन स्थितियों में जीता है, अपने दृष्टिकोण की अपेक्षा से, या अपने विचारों में, अपने ज्ञान में, और अपने आचरण में। ये तीन ही चीजें हैं, और तीनों में ही कंफ्यूजन है, तीनों में ही कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। कैसा आचरण करना, कैसा, कौन सा ज्ञान हमें सच्चा ज्ञान है, और कौन सा विचार सच्चा है, ये तीनों चीजें सच्ची होनी चाहिए, और यही हमारी अज्ञानता है कि तीनों में ही हम कंफ्यूज होते हैं। तो दूसरी ढाल में अगर कोई शॉर्ट में कहना चाहे तो ये कि हमने अपने भ्रमण का जो कारण जाना कि वो अज्ञान है, वो अज्ञान कैसा है, इस चीज को इंटरप्रेट करने के लिए दूसरी ढाल उस अज्ञान की जानकारी दे रहे हैं कि आपका कॉन्सेप्ट क्यों क्लियर नहीं है। और वो दो तरह से होता है, एक तो अज्ञानता हमारी अनादिकाल से चली आ रही, और एक अज्ञानता हमारी अज्ञानियों के बीच में रह करके हमने पाई, ऐसा अपन अपनी भाषा में लगाते। या एक मुंह तो हमारा अनादिकाल से चले आ रहा है, और एक मुंह जो है वो हमने यहीं पर डेवलप कर लिया है। तो जो हमने हमारा अनादिकाल से चला आ रहा है मुंह, उसको तो बोलते हैं ग्रहित मिथ्यात्व। मिथ्यात्व कहो, मिथ्या दर्शन कहो, मुंह कहो, ये सिनोनिम्स हैं। ये एक अर्थवाची शब्द है, यहाँ जब अपन छह ढाला पढ़ रहे हैं। मिथ्यात्व एक कर्म है जिसके उदय में हमारी दृष्टि भ्रमित हो जाती है, उसी का नाम, दृष्टि के भ्रम का नाम है मिथ्या दर्शन। इसलिए मिथ्यात्व कहो, मिथ्या दर्शन, और मुंह कहो, तो मुंह भी जो है वो दर्शन मुंह के लिए ही आता है, इसलिए यहाँ पर तीनों सिनोनिम्स। तो ये जो हमारी, मैं आपसे कह रहा था कि हमारी जो अज्ञानता है, वो अज्ञानता या मुंह हमारा अनादिकाल से चला आ रहा है, एक तो वो है, उसे हम कहते हैं अग्रहित मिथ्यात्व। वो कहीं से ग्रहण नहीं किया हुआ है, वो हमारे साथ हमेशा से। उस अग्रहित मिथ्यात्व में क्या है कि मोक्ष मार्ग के लिए जो आवश्यक बातें हैं, उन आवश्यक बातों को लेकर के ही हम भ्रमित हैं। तो मोक्ष मार्ग के लिए आवश्यक बातें कौन सी हैं? तो कहते सात तत्वों को पर श्रद्धान करना, उनको जानना, ये बहुत आवश्यक है, और इसी के बारे में हमारे कन्फ्यूजन है। तो फिर हमने ये पढ़ा कि जीव तत्व के बारे में हमारा कॉन्सेप्ट किस तरह का है, हम क्या सोचते हैं, अजीब के बारे में क्या सोचते हैं, क्या ये सही सोचते हैं। अब हमें अपना स्वयं एनालाइज करना है कि जीव के बारे में कैसा सोचना चाहिए और मैं कैसा सोचता हूँ। तो सबसे पहले तो ये कि मैं कैसा सोचता हूँ, तो मैं तो जो है जीव के बारे में ये सोचता हूँ, इसमें एक लाइन आई ना, तन उपजत अपनी उपज दान है, यही है ना,
उपजत अपनी उपज दान, तन मसत आप
नहीं करी करें देह में निज पिछान, ये उसकी एक लाइन में। अगर अपन एक चीज और मैं सोचता हूँ कि छेढ़ाला का उत्तर छेढ़ाला से ही दें, ये भी बहुत वही लाइन आनी चाहिए कि छेढ़ाला में क्या, वैसे तो अपन जानते हैं पर इस ग्रंथ में क्या लिखा हुआ है इसके बारे में, ताको न जान विपरीत मान।
महाराज जी एक्सप्लेन तो आप ज्यादा ज्यादा
एक्सप्लेन तो करना पड़ेगा,
आप बोलते हैं वो बिल्कुल खच जाता है, तो याद रहता है
नहीं, एक्सप्लेन
तो आप एक लाइन को पूरे दिन भर करो,
वो तो एक्सप्लेन में कर रहा हूँ नहीं, पर कोई शॉर्ट में पूछे कि इस चेढ़ाला में एक लाइन में बताइएगा कि आप इसका क्या आंसर हुआ। जैसे यही पूछा कि जीव तत्व के बारे में सामान्य रूप से एक जो मान्यता चली आ रही है हमारे अंदर हमारी अज्ञानता की वजह से, वो क्या है? तो कहते हैं करी करें देह में निज बिछा, हम शरीर में ही आत्मा मान लेते हैं, शरीर को ही आत्मा मान लेना, यही हमारी जीव तत्व के बारे में अज्ञानता है। ये हमारी मान्यता ठीक नहीं है, क्योंकि अब क्योंकि का जब प्रश्न आया तो फिर लॉजिक दे रहे हैं, क्योंकि पुद्गल नव धर्म अधर्म काल इनते न्यारी है जीव चाल। क्योंकि जितने भी हम जो हमने कहा कि शरीर ही आत्मा है, तो हमें ये जानना चाहिए कि शरीर तो पौद्गलिक है, और पुद्गल हो चाहे धर्म द्रव्य हो अधर्म द्रव्य हो आकाश हो काल हो, ये सब तो जो है जीव से बिल्कुल जुदे हैं। इसलिए हमारा ये जो सोचना है कि शरीर ही जीव है आत्मा है, वो तो ठीक नहीं हुआ। अच्छा ये तो आपने कह दिया कि शरीर जीव नहीं है, तो फिर जीव है क्या? तो कहते चेतन को है उपयोग रूप बिन मूरत चिन मूरत अपनी। तो उसका जवाब दे रहे हैं कि चेतन का स्वरूप भी जानो और जड़ का स्वरूप भी जानो, चेतन की इन सब से जो है चाल न्यारी है। तो इस तरह जीव तत्व के बारे में हमारी मान्यता हमें मालूम पड़ गई कि हम गलत विचार करते हैं। जीव तो चेतनात्मक है, उपयोग उसका लक्षण है, जानना देखना उसका स्वभाव है, और वो पांचों इंद्रियों के पकड़ में आने वाली चीज नहीं है, अमूर्त है और चैतन्य रूप है, चिन्मय है। और जबकि पुद्गल तो इससे विपरीत है। विपरीत कैसा है? तो पुद्गल मूर्त है, चेतन अमूर्त था। पुद्गल अचेतन है, चेतन तो चैतन्य रूप है। और जीव और जानता देखता नहीं, उपयोगवान नहीं है पुद्गल, लेकिन जीव तो उपयोगवान है। तो तीनों चीजों में विपरीतता है इस तरह। और अब अजीव तत्व के बारे में या जीव के बारे में और थोड़ा सा अभी बताते हैं। वो करी करें देह में निज पहचान कैसे कर लेते हैं? तो देह के सुख दुख को ही अपना मान लेते हैं। मैं सुखी दुखी, मैं रंक राव, मेरे ग्रह धन गोधन प्रभाव, मेरे सुतकी मैं सबल दीन बेरूप। ये सब चीजें किसके आश्रित हैं? ये सब चीजें शरीर के आश्रित हैं। मेरा सुखी दुखी होना भी शरीर के आश्रित है, मेरा कुरूप मेरा सबल होना, दीन होना, सुकुरूप और स्वरूप होना, मूर्ख और प्रवीण होना, ये सब इस देह के आश्रित है। और जितनी भी चीजें मैं अपनी मानता हूँ, जैसे मेरे ग्रह धन गोधन और मेरा प्रभाव, मेरा ये पुत्र, मेरा ये जीवन साथी, ये जितनी भी चीजें हैं वो सब शरीर आश्रित है। सारे संबंध हमारे शरीर आश्रित है, और हम स्वयं जो सुख दुख का अनुभव करते हैं वो भी सब शरीर आश्रित है। इसलिए हमने ऐसा अगर हम मानते हैं तो मानिएगा कि हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, शरीर को ही हमने आत्मा मान लिया है। अब जरा इसमें विचार करें कि ये तो हुई जानकारी, फिर वही बात आती है कि हम जान तो रहे हैं लेकिन क्या हम ऐसा फील करते हैं? नहीं करते हैं। कॉन्सेप्ट हमें श्रद्धा है, बस कहना चाहिए कि भगवान ने ऐसा कहा है इसलिए हमने मान लिया कि हाँ शरीर में शरीर नहीं हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ। किसी से भी पूछ लो, थोड़ा पढ़ा लिखा होगा, वो कहेगा नहीं नहीं मैं शरीर नहीं हूँ, शरीर नहीं हूँ। पर दिन भर काय का उपाय करते हो, आत्मा का करते कि शरीर का उपाय करते? आपका कॉन्सेप्ट तो
दूसरी जात के लोग भी ऐसे कहते हैं, हिंदू वगैरह, शरीर अलग आत्मा
अलग। इसी तो बोल रहा हूँ, इसलिए बोल रहा हूँ कि जानकारी तो सबको है, लेकिन हमारे यहाँ इसीलिए अकेली जानकारी का महत्व नहीं, रियलाइजेशन इज द रिलीजन। इसलिए लास्ट में यही परिभाषा आएगी कि आप अनुभव करते हैं अगर तो ठीक है, और आप अनुभव नहीं करते हैं तो सब बराबर ही है। कहने अकेले से क्या होगा, हम में और उनमें कोई ज्यादा फर्क नहीं है, क्योंकि हम जो चीज वो कह रहे हैं वो चीज, जब हमारा अनुभव कुछ अलग हो तो फर्क नजर आएगा कि आपका अनुभव अलग है हमारा अनुभव अलग है। अभी मैं पढ़ रहा था उसमें पुस्तक में कि शास्त्र के साथ बड़ा मजा है कि शास्त्र अपने अर्थ स्वयं नहीं कहता है, और जो अर्थ निकालता है उसी पर निर्भर करता है। तब हम शास्त्र की व्यर्थ कैसे निकाल सकते हैं? जो अर्थ किसी शास्त्र लिखने वाले निकाला, हम तो वही निकालेंगे जो हम निकाल सकते हैं
हमारी योग्यता।
हम अपनी योग्यता के अनुसार सारे शास्त्र के अर्थ निकालते हैं। अगर हमें कुंद कुंद स्वामी के समयसार का अर्थ निकालना है तो पहले हमें कुंद कुंद स्वामी होना पड़ेगा, तब हम उनके ठीक ठीक अर्थ, हमारी अप्रोच ये होनी चाहिए। अगर हमें छेड़हाला के अर्थ निकालना है तो हमें दौलत राम तो होना पड़ेगा, कम से कम उतनी ऊंचाई पर तो पहुंचना
पड़ेगा।
इसलिए इंटरप्रिटेशन डिफरेंट, और इसलिए जो ओरिजिनल चीज है वहां तक नहीं पहुंच पाती। तो शास्त्र के साथ ये बहुत मुश्किल। और पहले क्या होता था, शास्त्र की जगह पर साक्षात भगवान है तो उसका इम्प्रेशन ज्यादा पड़ता था, या कि शास्त्र को श्रुत केवली महाराज तो वो तो जो अर्थ निकालेंगे एकदम एग्जैक्ट मीनिंग निकालेंगे, उनकी भी लिमिटेशन है,
उनकी
भी लिमिटेशन। मतलब
अपने
अपन से तो ज्यादा, मैंने शास्त्र अभी एक अपन इस चीज पे पहुंच गया कि शास्त्र के साथ लिमिटेशन है, हमारी अपनी
वाणी में आया है वो पूरा का पूरा नहीं मान
नहीं आ पाना। तो जानना बिल्कुल अलग चीज है और फील करना बिल्कुल अलग। इन सब चीजों को ये कहा गया है कि इनको कोई भी जान सकता फिर भी मिथ्या दृष्टि रह सकता है, अज्ञानी रह सकता। अकेले जानने से कोई ज्ञानी नहीं होता। हमारे यहाँ तो जो अनुभवी है वो ज्ञानी है और जो अकेले जानता है वो ज्ञानी है। ये चीज अपने को ध्यान में रखने की कि ये तो कोई भी पढ़ लेगा तो वो ज्ञानी हो जाएगा क्या? बहुत छेड़ाला तो बहुत फेमस है, कोई भी याद कर लेगा और जैसा जैसा पूछ रहा है वैसा बता भी देगा। इतने से कोई ज्ञानी नहीं होगा। पर फिर भी हमें कम से कम ये जानना तो चाहिए कि हम शरीर नहीं है, ये जो हमारा कॉन्सेप्ट है और हमारी जो क्रियाएं हैं वो चूंकि सब शरीर आश्रित हो रही हैं तो हम इस भ्रम में पड़ जाते हैं कि, और कई बार यही फील करने लगते हैं कि शरीर ही मैं हूँ, वो ठीक नहीं। फिर कहते हैं कि अजीव तत्व के बारे में क्या आपका भ्रम है, मान्यता कैसे विपरीत है? तो कहते तन उपजत अपनी उपज जान, तन नसत आपको नाश। ये अजीब तत्व के बारे में मैं थोड़ा सा पिछले दिनों उतना एक्सप्लेन नहीं कर पाया क्योंकि असल मैंने जनरली कह दिया था कि जो जीव के बारे में अपन अजीब का भ्रम कर लेते हैं और अजीब का जीव का भ्रम कर लेते हैं इतना ही है। इसको थोड़ा और एक्सप्लेन करें अपन। तो जो पहले करें देह में निज बिछान, जब हम शरीर में अपने आत्मा को मान लेते हैं और अपने को सुखी दुखी या बेरूप सुभग मूरख प्रवीण ये सब मानने लगते हैं तब तो ये कहलाएगा जीव तत्व की भूल। और अजीव तत्व की भूल क्या? तन उपजत अपनी उपज जान, तन नसत आपको। अपने शरीर की उत्पत्ति को ही अपनी उत्पत्ति मान लेना और शरीर के नष्ट होने को ही अपना नष्ट होना मान लेना, ये जो है अजीव तत्व के बारे में भूल इस तरह। और आश्रय के बारे में भूल क्या है कोई बताएगा? कौन बताएगा आश्रय के बारे में? उसी की क्योंकि लाइन भी अपने को याद आ जाए तो भी ठीक है। रागादि प्रकट ये दुख दैन, इसमें एक चीज और कर सकते हैं कि पहले अपने को लाइन याद आ जाए तो फिर एक्सप्लेनेशन हो सकता आसानी से। तो क्या एक्सप्लेन करेंगे अपन इसको कि आश्रय के बारे में मेरा हमारी मान्यता क्या है? आश्रय के मायने क्या है? कर्मों का आना। कर्मों के आने का द्वार क्या है? हमारे राग द्वेष। तब जब मैं ये जानता हूँ कि राग द्वेष करने से मेरे कर्म आते हैं तब फिर मैं उनको, और मेरे लिए कर्म आना ही दुखदाई है, फिर उनको मैं अच्छा क्यों मानता हूँ? रागादि प्रकट ये दुख दें, तिन्हीं को सेवत गिनत हैं, उसी में मैं अपना आनंद मानता हूँ। दिन भर जो है तेरा मेरा करता रहता हूँ, ये राग द्वेष करता रहता हूँ, जबकि जानता हूँ इससे कुछ होने वाला नहीं, इससे सिवाय दुख के और कुछ नहीं मिलने वाला, फिर भी वही क्रिया करता हूँ। इसका मतलब है मेरी मान्यता कहीं
गड़बड़ी,
आश्रय की भूल है ये कि मैं जब जान रहा हूँ कि इससे मुझे दुख, माने अपन कर्म वर्म छोड़ दो, हम इनसे अच्छे से बात नहीं करेंगे तो अंततः मुझे ही दुख होने वाला है, इस चीज से मैं राग करूंगा तो ये चीज तो एक दिन नष्ट हो जाने वाली है, फिर मुझे दुख मिलेगा कि नहीं, इस चीज से मैं द्वेष करूंगा तब भी मुझे दुखी होने वाला। जब मैं ऐसा अपने अनुभव में रोज जान रहा हूँ कि राग और द्वेष करने से मुझे दुखी मिलता है तब फिर मैं राग द्वेष को ही क्यों ठीक मान बैठता कि नहीं ये तो हो गई बट नेचुरल, अब संसारी है तो क्या, वो तो राग द्वेष तो हो गई। तो इसका मतलब है आपने उसको अपनी नियति मान ली। ये यहाँ कहना चाह रहे हैं कि नहीं, राग द्वेष करना हमारा नेचर नहीं है, राग द्वेष करना हमारी भूल है, कम से कम इसको तो माने अपन। यही बात यहाँ दूसरे ढंग से अपन कहना चाहें कि कर्मों के आश्रय, कर्मों के आने को आश्रय बोलते हैं और कर्म आते हैं राग द्वेष के माध्यम से, और जब कर्म आते हैं राग द्वेष के माध्यम से तो दुख पहुंचाते हैं, ये हम हमेशा देखते हैं और हम इसी को अच्छा मानते हैं। इसका मतलब है कि हमारी इस तत्व के बारे में भूल, ऐसा कह लीजिएगा। और सरल भाषा में कहना हो ऐसा कह सकते हैं कि मैं हमेशा देखता हूँ कि जब भी राग द्वेष करता हूँ अच्छा और बुरा के चक्कर में फंसता हूँ तो मुझे दुख मिलता है, इसके बाद भी मैं अच्छे बुरे के चक्कर से बच नहीं पाता हूँ, यही मेरी आश्रय तत्व के बारे में मेरी भूल है। इसी तरह बंध के बारे में एक ही लाइन में इसमें लिख दिया है, शुभ अशुभ बंध के फलमझार रति रति करें निज पथ दिशा, ये करूंगा तो इससे अच्छा होएगा, ये करूंगा तो इससे बुरा होएगा, बस अच्छा और बुरा, और अच्छे का फल मुझे अच्छा मिलेगा तो मैं हर्ष मानूंगा, बुरे का फल बुरा मिलेगा तो उसमें विषाद करूंगा। तो ये जो हर्ष विषाद करता हूँ वो मेरे नए बंध का कारण है, ये कहना ये चाह रहे हैं। कर्म तो मेरे बंधे हुए हैं, हमेशा से बंधे हुए हैं, लेकिन नए कर्म कैसे बनते हैं? जब उन कर्मों के उदय में मैं हर्ष विषाद करता हूँ तब बनते हैं। इसलिए ये लाइन इतनी कीमती हो गई कि रति अरति करें निज पद विषाद। अपने नेचर को भूल करके हम उसमें हर्ष विषाद कर लेते, जबकि हर्ष विषाद करना हमारा स्वभाव नहीं है। हमारा स्वभाव जानना देखना है, हम सिर्फ जस्ट सी देखें, जो कुछ घटित हो रहा है उसको हम देखें कि ये घटित हो रहा, लेकिन ऐसा कहाँ हो पाता है? उस रूप हो जाते हैं। हर्ष की बात हुई तो हर्षित हो जाते हैं, विषाद की बात हुई तो विषाद। किसी को कम होता है, किसी को ज्यादा होता, बस इतना ही है इसमें। बाकी क्या कहें, मैंने आश्रय और बंध के बारे में जानने वाला भी हर्ष विषाद से बच नहीं पाता। इसलिए कहते हैं कि ये सारी भूल मालूम कहाँ जाके मिटेगी, जब वितराग सम्यक दृष्टि होएगा। ये सारी चर्चा जितनी भी भूलों की करी है, ये जो आजकल सामान्य रूप से सामान्य व्यक्ति के लिए भी कहा जाने लगा कि ये आश्रव तत्व की भूल, ये सब ये बहुत ऊंची अवस्था की बातें। इसको पढ़ने से तो यही लग रहा है कि बहुत ऊंची अवस्था की, जो वितराग सम्यक दृष्टि हो गया, महाव्रति हो गया, और वो भी ध्यान में लीन, चर्या करते हुए नहीं। चर्या में तो राग द्वेष हो गई, ये अच्छा है ये ठीक नहीं है, यहाँ बैठूं वहां नहीं बैठूं, यहाँ अच्छा लग रहा है, इसका मतलब है कि भीतर भले ही नहीं कह रहे हैं आप ये चीज नहीं लेना, ये चीज लेना, क्या मतलब है? चॉइस तो है, अभी है चॉइस तो है कि ये नहीं लेना,
मगर उसमें वो गहराई नहीं है जैसे दूसरी।
हाँ, वो ठीक है, इंटरेस्टिंग नहीं है, लेकिन है तो उसमें चॉइस तो, इधर बैठूंगा उधर नहीं बैठूंगा, इधर अच्छा लग रहा है धूप है तो आपने चॉइस तो करी। ये मतलब पूरी तरह से कहाँ बनेगी, ये तो बहुत ऊंची अवस्थाएं बनेगी। शुरुआत में सिर्फ जान सकते हैं, पर इसको पूरी तरह से फॉलो करना आसान नहीं है। फिर कहते हैं ये हो गया बंध के बारे में, फिर संवर के बारे में बताएगा कोई? हाँ, उसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। आत्म हित हेतु विराग, मैं बता देता हूँ, आत्म हित हेतु विराग ज्ञान ते लखे आपको कष्ट। अब एक्सप्लेन करो, देखें
मेरी वो भी आश्रम के रोकने के जो हमारे साधन है, हमें कष्ट नहीं मानते, यही हमें सबसे बड़ी दिक्कत।
और थोड़ा सा क्लियर करें, कर्मों के आने के रोकने के जो उपाय हैं वो है विराग ज्ञान।
हाँ,
जिनसे मेरे कर्मों का आना रुकता है, ऐसे आत्मा के हित करने वाले जो वितराग भाव हैं, उनको मैं नहीं करता हूँ और बल्कि उनको उल्टा दुखदायी मानता हूँ। यही मेरी संवर तत्व के बारे में पूरी है, इतना एक्सप्लेन करेंगे। अच्छा, फिर बताओ कोई, देखें अब बताओ, देखें कैसे आना चाहिए। मैं कल सोच रहा था कि मैं पढ़ाते तो जा रहा हूँ एकदम कट से, लेकिन
समझते
जाएंगे, ठीक
समझते
हैं। मतलब वो अच्छा नहीं मालूम पड़ता, वो वैसा करना अपने को कष्टप्रद मालूम पड़ता। हाँ, कि ये तो भाई बड़ा मुश्किल है, ये अपने से नहीं होता, इससे तो दिक्कत। हाँ, इससे तो दिक्कत। जिन जिन चीजों में आत्मा का जिस चीज में हित होता है, उस चीज को फॉलो नहीं करना, एक तरह से उसको कष्टप्रद मानना तो है ही। कष्टप्रद मतलब ऐसा नहीं समझना एकदम कि कोई बहुत बड़ी तकलीफ में हम पड़ जा रहे हो, नहीं, हम उस चीज को करते नहीं है, इसका मतलब हम उसको ठीक नहीं मानते, हमें बहुत दुखदायी मालूम पड़ता है। किसी से कहें कि व्रत नियम संयम ये ले लो, क्योंकि संवर के कारण तो यही है। गुप्ती समिति, हमने कहा था ना, गुप्ती समिति धर्मानुप्रेक्षा परिचय चारित्र, ये संवर के कारण है, ये आत्मा के हित के। विराग ज्ञान से मतलब यहाँ पर क्या है? राग द्वेष नहीं करना अंतरंग में, और बहिरंग में व्रत नियम का पालन करना, ये है। तो मैं व्रत नियम के पालन करने को कष्टप्रद मानता हूँ, क्योंकि उसमें मुझे दिक्कत होती है, अरे ये छोड़ना पड़ेगा, ये छोड़ना पड़ेगा, ये छोड़ना पड़ेगा। आना अच्छा लग रहा है, आने का रुक जाना हमें अच्छा नहीं लगता। और आसानी से ये कहें, कोई भी चीज ले लो, परिग्रह से शुरू कर लो, चलो परिग्रह आ रहा है, अच्छा लग रहा है, आना रुक जाता है, कष्टप्रद मालूम पड़ता, यही तो है। हम संसार की जितनी चीजें हैं, संसार बढ़ाने वाली, उनके आने के रुक जाने पर कष्ट महसूस करते हैं। और ये तय है कि जब जब हम आत्मा के हित की बात करेंगे, संसार में जो हित कर लगने वाली चीजें हैं उनको मुझे रोकना पड़ेगा, और वही मुझे कष्टप्रद मालूम पड़ता। अब मेरे ख्याल से ज्यादा है, क्लियर हो गई चीज
है।
तो
अपनी भी विक्टर है, हम सबको अपन जो है मतलब समझ नहीं पाते, जैसे
राग
द्वेष हो जाता है तो उसको
जल्दी समझ, जैसे कि हाँ ये भी कह सकते हैं इसको, और दूसरे ढंग से एक्सप्लेन ऐसे करना था कि जो व्यक्ति व्रत नियम संयम कर रहा होगा तो उसको तो सोचते बड़े कष्ट में है, ऐसा ले लो कि देखो दिन भर से जो है अब 12 बज रहे चेहरे पे, वो खाओ है नहीं, खा लेते तो अच्छा, हमारे जैसा फ्रेश तो रहते एकदम, दिन भर से उपवास किया इन्होंने, वो दूसरे का देख करके कष्टप्रद मालूम पड़ता, अपने लिए यही तो कष्टप्रद हो गया,
मतलब आत्मा के स्वरूप की समझने में गलती है,
इसलिए
वो क्लियर ही नहीं है आत्मा का क्या स्वभाव है।
जैसे कई लोग कहते थे ना केश लोच में तो बड़ा दुख होता होगा, बड़ी तकलीफ होती होगी, उपवास में तो बड़ी तकलीफ होती होगी, इसका मतलब आप उपवास को या केश लोचन को या और भी जो ठंड इत्यादि परिषय सहन करने को आप दुखदायी मानते हो, कष्टप्रद मानते, जबकि आपको तो ये मानना चाहिए कि ये तो आनंद वाली क्रिया है, आपको तो आनंद आता होगा, ये कोई नहीं पूछता महाराज जी केश लोच से तकलीफ तो होती होगी। हाँ भैया होती है तकलीफ होती है, क्या करें उसको ये नहीं लगता कि केश लोच करने से आपने कैसा आनंद पाया होगा, मैं तो जो है एक बाल तोड़ता हूँ तो दुख से भर जाता हूँ, आप पूरे तोड़ रहे हैं और आनंदित हैं, इसका मतलब है कि आपके अंदर कॉन्सेप्ट क्लियर है कि आत्मा अलग है और शरीर अलग है, आप दुख की फीलिंग होते हुए भी दुख नहीं मानना, फीलिंग तो होगी, जैसे हमने मीठा रखा जीभ पर तो मीठा लगेगा, पर मीठा है इसलिए अच्छा है, हाँ वो मैं उसको सुख और दुख का कारण मान लेता हूँ, और मीठा छोड़ने को दुख का कारण मान लेता हूँ, जो मुझे अच्छा लगता है और जब वो आ जाता तो मैं उससे तो अल्टीमेटली क्या हुआ, मैं संवर नहीं कर पाऊंगा, मैं आश्रय भी करूंगा राग द्वेष करूंगा, तो ये उसका भाव,
शरीर की तकलीफ में तो सहन भी तो है, सहन कम हो शरीर की तकलीफ ज्यादा हो तो वो सब समझने के बावजूद भी तकलीफ लगेगी, समझ रहे हैं लेकिन अब क्या करें,
पर
वो लिमिट के भीतर है,
लिमिट रहेगी, कॉन्सेप्ट क्लियर है उसका, इसलिए जैसे कि आपने ये बात कही तो इसको थोड़ा और एक्सप्लेन करें अपन, कि जैसे अपन सुनते हैं कि एक मिथ्या दृष्टि है, मुनि महाराज बन गए, परिचय खूब सहन करते हैं, घानी में उनको पेल दिया, इतना कष्टप्रद स्थिति हुई, इसके बाद भी सहन कर लिया, शरीर की क्षमता के साथ साथ मन की क्षमता भी है, लेकिन कॉन्सेप्ट फिर भी क्लियर नहीं है, कॉन्सेप्ट ये है कि मुझे ऐसा करने से बाद को सुख मिलेगा, इंद्री का सुख मिलेगा, मैं आज अगर एक दिन उपास की पीड़ा सह लूंगा तो कल चारों तरफ मेरे लोग अच्छी अच्छी चीजें लाएंगे कि भैया का कल उपवास था, आज काफी ध्यान दे, ये कॉन्सेप्ट है, अगर ये कॉन्सेप्ट है तो आप सहन तो कर रहे हैं,
उस समय जो सहन हुआ वो सिर्फ सहन के कारण,
सिर्फ सहन के कारण हो गया, अब दूसरी दृष्टि देखना, एक सम्यक दृष्टि है जो ये मानता है कि शरीर अलग है, मेरा आत्मा अलग है, लेकिन शरीर पर आने वाली थोड़ी सी आपत्ति को भी अपने शरीर की कमजोरी की वजह से सहन नहीं कर पाता, तब भी हम क्या कहेंगे, जो आप कह रहे हैं तब भी उसका कॉन्सेप्ट तो क्लियर है, सहनन चूंकि कम है इसलिए, पर वो लास्ट में यही कहेगा कि नहीं नहीं मुझे सहन करना चाहिए, मैं सहन कर नहीं पा रहा हूँ, मेरी ये कमजोरी है, इस तरह तो एक सम्यक दृष्टि जरा सा मच्छर काटने पर विचलित हो सकता है, और एक मिथ्या दृष्टि बड़ा भारी पहाड़ टूट पड़ने पर भी विचलित नहीं हो, है तो अपन क्या कहेंगे कि इसका कॉन्सेप्ट क्लियर है, इसका गड़बड़ है ये भी अपने को थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, ये बिल्कुल अंतरंग की चीज है कि हम किस में कष्ट मानते हैं किस में कष्ट नहीं मानते हैं, ये बात अलग है कि मैं केश लोचन की क्रिया को कष्टप्रद नहीं मानता हूँ, लेकिन क्या करूं मेरा शक्ति कम है इसलिए थोड़ी तकलीफ होती है, लेकिन ये कष्टदायक नहीं है, ये तो मुझे सुखदायक है, ये मेरे भीतर एकदम स्पष्ट है, ऐसा कॉन्सेप्ट भीतर क्लियर होना चाहिए, ये आशा इसका थोड़ा सा और मैंने बारीक अर्थ निकाल रहे हैं अपन उसमें से, अब देखिएगा और क्या बचा, निद्रा, निद्रा के लिए क्या है,
इच्छाओं का निरोध ही तप है और तप ही निर्जरा का कारण है, लेकिन हम अपनी इच्छाओं को कम नहीं करते हैं, ये हमारी निर्जरा,
लगभग ठीक है, ये निद्रा में लाइन क्या है, रोके न चाह निज शक्ति कोय शिव रूप निराकुलता न जोय, मुझे मालूम है कि जितनी निराकुलता होगी उतना मुझे मोक्ष सुख मिलेगा, लेकिन मैं आकुलता करता हूँ, आकुलता मतलब मैं इच्छाएं करता हूँ, इच्छाओं को नहीं रोकता हूँ, यही मेरे निद्रा के बारे में भूल है, अगर मैं अपनी इच्छाओं को नहीं रोकूंगा तो मुझे कर्मों की निद्रा नहीं होने वाली, मैं तो अभी कलेक्शन ही कर रहा हूँ, हटा कहाँ रहा हूँ,
महाराज जी ये निद्रा हुई जो उदय में आई,
दो तरह की निद्रा हो जाए,
इच्छा हुई मैंने रोक लिया, वो निद्रा हुई,
वो तब कहलाएगा,
तब तो कहलाएगा, वो तब तो कहलाएगा,
एक बार निद्रा कहलाएगा,
बाकी कर्म होगी निद्रा कैसे होगी, वो तो अलग टाइप से होगी।
दो प्रकार की
निद्रा हुई
ठीक है, दो प्रकार की निद्रा है, एक सविपाक निद्रा होती है, एक अविपाक निद्रा होती है। कर्मों का अपना फल दे करके और निकल जाना ये कहलाती सविपाक निद्रा। देखना जिसमें हमने कोई प्रयास नहीं करा, ठीक है, यहाँ किस निद्रा की बात है, यहाँ इस निद्रा की बात नहीं है जिसमें हमने कोई प्रयास नहीं, कह रहे हैं कि आप प्रयास करो अपनी इच्छाओं को रोकने पर जो निद्रा होगी वास्तव में वो निद्रा सही है, सम्यक पूर्वक निद्रा। इसलिए फिर वही बात आई कि बहुत ऊंची बात है यहाँ अविपाक निद्रा का।
इसमें महाराज जी दो तरह की हुई ना निद्रा, एक जैसे कोई कर्म का मेरे उदय आया उससे मेरी इच्छा जागृत हुई उसको मैं रोक लिया,
बस यही तो निद्रा है, यही तो पाप है।
ये तो उतनी कर्म की हुई ना जो उदय में आया,
क्यों अकेले इतने की नहीं, और भी कर्मों की निद्रा होगी क्योंकि मैं तप कर रहा हूँ। इच्छा निरोधा है तपा, इच्छाओं का मैंने निरोध किया। जैसे सपोज कर इसको और एक्सप्लेन करने के लिए अपन मेरे मन में आज घर में बहुत बढ़िया मीठी चीजें बनी, चलिएगा मिठाई बनी और मुझे बहुत पसंद है वो है, और मेरी इच्छा भी है, पर मैंने सोच लिया कि आज तो मैं मिठाई नहीं खाऊंगा, आज तो मीठा नहीं खाऊंगा। अब मेरे कर्म का उदय आएगा भी तो निर्जरित हो जाएगा, मुझे वो फल नहीं देगा और आगे के लिए कर्म नहीं बनेंगे, यही संवर पूर्वक निर्जरा कहना है।
ये तो हो गई। अब इसके बाद जो पूर्व कई बहुत लंबे लंबे कर्मों को बुला के जो मुनि महाराज निर्जरा करते हैं वो इसमें कहाँ है,
उसके उसके लिए भी इसी में अपन शामिल करेंगे। हाँ, क्योंकि रस परित्याग नाम का तप जो है वो निर्जरा के लिए कारण तो बनेगा, अब भूमिका के अनुसार बनेगा। अब एक सामान्य श्रावक है, उसने एक दिन रस परित्याग कर दिया तो उसको उतनी निद्रा, थोड़ी बहुत निद्रा होगी, जितने कर्म उसके उदय में आ रहे थे वही खिर गए, और आपने महीनों उपवास रख लिया तो क्या होगा, जो पुराने कर्म बात को थे वो सब उदीरित होकर के और अभी अभी खिर जाए।
जो कठिन कठिन तप करके निद्रा करते,
निद्रा कठिन तप से नहीं होती, निद्रा
मन के समय जो तकलीफ होती है उसको आराम सहन करते हैं तो कर्म की निद्रा ज्यादा
भी, उसमें भी निद्रा होती है, पर हम ये ध्यान रखें कि हमारा जितना राग द्वेष कम होगा उतनी निद्रा होगी। हो सकता है बाहर में दिखने वाला तप कम, हो सकता है एक व्यक्ति ने उपास करा है और दिन भर राग द्वेष कर रहा है तो वो उसका उपास नाम का तप उसकी कर्म की निद्रा में सहयोगी नहीं होगा, और एक व्यक्ति ने भोजन कर लिया है, एक ही बार भोजन किया है और राग द्वेष नहीं करता, अपनी इच्छाओं को रोकता है तो उसके लिए अधिक। इसलिए इनने ये नहीं लिखा कि आप कोई विशेष प्रकार का तप करें, कहते इच्छा रोके न चाह, अगर आपने अपनी चाहत रोक ली है, इच्छाएं रोक ली है तो आपका वो तप हो गया।
बारह उदीर्णा वाली निद्रा कौन सी होगी, जो कर्मों की उदीर्ण कर लेती है, हजारों साल बाद उदय में आने वाले हैं और तप के द्वारा बुला के निद्रा कर
जल्दी में उनकी निद्रा हो जाए जल्दी,
वो कौन सी निद्रा है, ये तो अपने सामान हो गए।
आप मुझे ये बताएं कि अविपाक निद्रा में भी दो भेद करना चाह रहे हैं आप,
कैसे होगी, जो उदय में आ रहे हैं निद्रा हो रहे हैं तो फिर बाद में जो उदय में आ रहे हैं उनको पहले बुला के निद्रा कर देते हैं,
तो जैसे आज मेरे इच्छा थी कि मैं फलानी चीज खाऊं और मैंने नहीं खाई तो क्या किया मैंने, जो कर्म आ रहे थे उन्हीं को नहीं, ऐसा मत समझना, जो बाद को आने वाले थे उनकी भी उदीर्णा करवा ली हमने और उदीर्णा करवा के उनको भी खिरा दिया है, दोनों काम एक साथ चलेंगे। मैं इसलिए सोच रहा था कि आप कहाँ कंफ्यूज कर रहे हैं, अकेले उतने ही नहीं है, इसी को तो अविपाक निद्रा कहेंगे, नहीं तो वो तो सविपाक हो गई कि आपके कर्म उदय में आ रहे थे आपने सहन कर लिया खत्म, क्रोध क्रोध का उदय आया और आपने क्रोध कर लिया तो अपना फल दे के खिर गया, और आपने क्रोध नहीं करा तो बिना फल दे के खिर गया। पर इतना ही नहीं है, कहते हैं कि बिना फल दिए तो खिर गया पर और बाद में भी आने वाला था वो भी उसके साथ निकल गया, ये अविपाक में।
तो अविपाक में क्या उदाहरण होगा, इसमें बाद में आने वाले जो कर्म थे वो अभी खिर गए, इसको उदाहरण क्या होगा,
अब इसको कैसे, मैंने थोड़ा सा क्रोध तो अभी आया था और बाद को तो बहुत पड़ा हुआ था, वो सारा का सारा इसी के साथ निकल गया, यही मानना पड़ेगा। आम के पेड़ को अपन बोलते हैं ना कि पांच दिन के बाद आने वाले थे पके हुए आम, डाल पर पक रहे थे, पांच दिन के बाद पूरे पक जाते तब खाने मिलते, नहीं 15 दिन के बाद पकने वाले थे, हमने क्या करा उसको वहां से तोड़ लिया, तोड़ करके पाल में पका लिया तो 5 दिन में ही आ गए, तो 15 दिन बाद आने वाला 5 दिन में निकल गया, ये है। और आम तो मिला हमारे लिए खाने के लिए तो फल मिला, तो कर्मों का जो क्रोध का उदय जैसे आया और मैंने क्रोध के उदय में क्रोध नहीं किया तो ये जो वर्तमान का कर्म था उसने तो फल दिया ही नहीं, बाद में भी जो क्रोध आने वाला था वो संस्कार भी इसके साथ टूट गया, ये दिखता नहीं, ये पता नहीं लगता। आम के उदाहरण में तो पता लगता है
कि वहां से उसके साथ में बाद वाले कर्मों की
वो भी निर्जरा होता है और संवर पूर्वक होती है, नए कर्म नहीं बनते हैं। इस तरह क्या चीज आ गई अपने हाथ में कि निर्जरा जो होती है वो निर्जरा होती है अपनी इच्छाओं के रोकने से, और अब मैं अपनी इच्छाओं को नहीं रोकता हूँ, इस तरह मैं अपनी शक्ति का अपव्यय करता हूँ। क्योंकि आपके इच्छा करने से शक्ति का अपव्यय होता, अपनी निज आत्मा की शक्ति का अपव्यय होता, उस अपव्यय एक तो अपव्यय भी कर रहा हूँ और दूसरा अपनी चाहत न रोक करके नए कर्मों के आगमन के लिए तैयार हूँ, इस तरह में निर्जरा तत्व के बारे में मेरी भूल है। और शिवरूप ये जो है शिवरूप निराकुलता न जोय, ये मोक्ष तत्व की भूल है। मैं निराकुलता पाने की कोशिश नहीं करता हूँ, मैं मोक्ष के बारे में तो ये जानता हूँ कि सब कर्मों से मुक्त होने की अवस्था मोक्ष है, लेकिन मैं ये नहीं जान पाता हूँ कि आकुलता करूँगा। मेरी मान्यता मुक्ति के बारे में क्या है? कर्मों से मुक्त होना ठीक है, लेकिन कर्मों से मुक्त कब होऊंगा? मोक्ष में निराकुल अवस्था है, मोक्ष सुख कैसा है? निराकुलता वाला है, और मैं करे चला जाता हूँ आकुलता, या कि मैं निराकुलता को मोक्ष नहीं मानता हूँ, ये मेरा कॉन्सेप्ट गड़बड़ है मोक्ष के बारे में। जितनी जितनी आकुलता कम होगी उतना उतना मोक्ष है मेरा, ये होना चाहिए था, लेकिन मैं उस निराकुलता को पाने की कोशिश नहीं करता हूँ और मोक्ष तो चाहता हूँ, तो इसका मतलब है मोक्ष के बारे में मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, ऐसा इसका अर्थ है। आया क्लियर हुआ कि नहीं हुआ है? अब इसी प्रकार से या ही प्रतीति, जैसा हमने ये प्रतीति मतलब जैसा हम ये अनुभव कर रहे हैं, अपने मान्यता मान रहे हैं वैसा ही हम जानते हैं, जैसा हम मान रहे हैं वैसे ही हम जान भी रहे हैं, तो वही हमारा अज्ञान होंगे। मान्यता हमारी ये है और हमारा ज्ञान भी इसी तरह का, जैसी हमारी मान्यता है वैसा हमारा ज्ञान है, तो ज्ञान भी जो है मिथ्या हो गया। मिथ्या दर्शन के साथ जो ज्ञान होता है उसे मिथ्या ज्ञान कहते हैं और इसे ही अज्ञान कहते हैं, और यही मेरे दुख का कारण है। और फिर कहते हैं कि इनजुत विषयन में जो प्रवृत्ति, ये अपन ने कल समझा था कि इस तरह के मिथ्या ज्ञान और मिथ्या दर्शन के साथ मैं जो पांचों इंद्रियों के विषयों का सेवन करता हूँ वही तो मेरा मिथ्या आचरण है। अकेले पांचों इंद्रियों का सेवन करना मिथ्या चारित्र नहीं है, देखना उसके साथ हमारा दृष्टिकोण गलत है। इनजुत इस प्रकार से मैं कॉन्सेप्ट अपना गड़बड़ा करके और फिर पांचों इंद्रियों के, वैसे तो किसी व्यक्ति का कॉन्सेप्ट क्लियर हो और फिर वो पांचों इंद्रियों के यथायोग पदार्थों को ग्रहण करता है तब भी उसका चारित्र सम्यक चारित्र माना जाए। मुनि महाराज जी भी जो है और एक सम्यक दृष्टि सामान्य है, वो भी सब पांचों इंद्रियों के विषय, सूंघने की चीज सूंघता है, खाने की खाता है, सुनने की सुनता, सब कुछ कर रहा है, लेकिन उसको नहीं मान रहे मिथ्या चारित्र। मिथ्याचारित्र उसको मान रहे हैं जो पांचों इंद्रियों के विषयों में प्रवृत्त तो है पर कॉन्सेप्ट जिसका गड़बड़ है। अर्थात मिथ्या दर्शन और मिथ्या ज्ञान के साथ जो भी आचरण होता है उसे मिथ्या आचरण कहते हैं। दृष्टिकोण गड़बड़ होने पर हमारे आचरण में भी गड़बड़ी आती है, भले ही हम बाहर से अच्छा आचरण करते रहें, ऐसा है। बाहर से अच्छा आचरण हो सकता है पर यदि हमारी दृष्टिकोण ठीक नहीं है तो वो आचरण यहाँ इस भाषा में मिथ्या ही माना जाएगा। इसीलिए अपराध और पाप में फर्क है। अपराध तो ये है कि जिसको समाज ठीक नहीं मानती, ठीक है ना, और पाप वो है जिससे कि हमारे आत्मा का पतन होता है, वो पाप है। इतनी परिभाषा इसकी है। ठीक इसी तरह ये समझना कि एक तो दृष्टिकोण हमारा ठीक नहीं है फिर हम आचरण कर रहे हैं तो वो आचरण मिथ्या आचरण, और एक हमारा दृष्टिकोण ठीक है फिर हम अपने यथायोग आचरण कर रहे हैं वो आचरण सम्यक है। दृष्टिकोण गलत होने पर होने वाला आचरण मिथ्या है दृष्टिकोण, क्योंकि ये मोक्ष मार्ग है भाई, ये हम पहले देख लें, इसमें ये हमें ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि मोक्ष मार्ग का कथन है इसलिए ये बात ठीक बैठेगी, बाकी नहीं, बाकी में तो जानकार व्यक्ति जो भी क्रिया करता है उसको ठीक माना जाता है, लेकिन कौन सा वाला ज्ञान?
तो महाराज जी इसको ऐसा समझे कि ज्ञानावरणी कानो के शेयर सबसे पांच इंद्रियां मिली,
बिल्कुल
उनके विषय मिले द्वारा जो जाना वो ज्ञानावरणी मतलब मिथ्या तो होने कारण वो उल्टा जाना,
और थोड़ा एक्सप्लेन करें उसको। आप ठीक समझ रहे हैं, उस तरफ ले जा रहे हैं। जैसे कि मैं अपने को ज्ञानी कब मानता हूँ, जब मैं चीजों को जान लेता हूँ। लेकिन यहाँ ज्ञानी उसे मानते हैं जो चीजों को ठीक ठीक जानता है। अब आप कहेंगे तो क्या मिथ्या दृष्टि पिछी को पिछी नहीं जानता? कहते मिथ्या दृष्टि भी पिछी को पिछी जानता है, सम्यक दृष्टि भी पिछी को पिछी जानता है, लेकिन मोक्ष मार्ग के बारे में उसका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, इसलिए उसका ये ज्ञान भी मिथ्या है। सांसारिक दृष्टि से तो उसको ज्ञानवान माना जाएगा, लेकिन यहाँ मोक्ष मार्ग में उसको अज्ञानी मानते हैं। ये अपने को थोड़ा सा समझने वाली चीज है, एकदम दिमाग में जो है क्लियर होनी
तो
चाहिए।
ऐसा समझने कि जो ज्ञान का उपयोग अवैध रूप करता है वो मिथ्या दृष्टि,
वो मिथ्या दृष्टि।
जो विवेक से करता है वो
ज्ञान, ज्ञान ज्ञान कितना भी क्यों,
कितना भी ज्यादा ज्ञान हो वो विवेक से युज नहीं कर रहा, वो मिथ्या दृष्टि है।
ठीक। और दूसरा इसमें और ये कर सकते कि पांचों इंद्रियों का जो क्षयोपशम है वो तो उनके क्षयोपशम से प्राप्त हुआ है कर्मों के, अब उसमें मिथ्या और सम्यकपना किससे आएगा? मिथ्या की वजह। मेरी आंख का मैं, अच्छा ऐसा करो, मैं अपनी आंख से उतनी दूर देख लेता हूँ, ठीक है, मेरा आंख का ज्ञान ज्यादा है, ये भैया जी जो है वो थोड़ा कम देख पाते हैं, उतने दूर का नहीं क्लियर देख पाते, तो इनका ज्ञान कम है। ये अज्ञानी कहलाए और मैं ज्ञानी कहलाया, ये हो गया सामान्य में जो अपन रोजमर्रा के उसमें देखते हैं। लेकिन यहाँ मोक्ष मार्ग में ये कह रहे हैं कि भले ही आप इतनी दूर देख पाते हैं लेकिन आपका दृष्टिकोण ठीक नहीं है, इसलिए हम आपको ज्ञानी नहीं कहेंगे। मोक्ष मार्ग के बारे में आपका जब कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तब हम इस वाले ज्ञान को आपके सम्यक कहेंगे, नहीं तो हम इस ज्ञान को भी नहीं कहेंगे। वरना तो कोई साइंटिस्ट है और बहुत सारा ज्ञान रखे हैं, इंटेलिजेंट है, तो उसको ज्ञानी कह देंगे?
नहीं,
यहाँ उसको ज्ञानी नहीं कह रहे हैं, यहाँ उसको ज्ञानी कह रहे हैं जो वास्तविकता को जानता है, जो वास्तविकता को जानता है, जो चीज जैसी उसे वैसा श्रद्धा करता है और वैसा ही जानता है।
मतलब ज्ञान वर्णी कर्म के क्षय सबसे उससे कितना भी ज्ञान मतलब नहीं,
दर्शन मोहनी
सबसे
बिल्कुल
ये सबसे होना चाहिए
ये। तो उसी तरह से पांचों इंद्रियों के विषयों को कोई व्यक्ति कितना इंडल्स होके भोग रहा है इस पर डिपेंड करता है, ऐसा ले लो। मिथ्या दृष्टि बहुत इंडल्स होकर के वो छोड़ भी देता है तब भी उसकी इंडल्सिंग है कि कोई और चीज मिलेगी इससे बढ़िया सुपीरियर, इसलिए छोड़ रहा है वो। एक जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है वो हो सकता है कि चीजों को कम भोगे, लेकिन क्यों कम भोग रहा है कॉन्सेप्ट तो देखो उसका कि आगे और अच्छा मिलेगा, इसलिए छोड़ दो अभी। और एक जो है सम्यक दृष्टि है वो पांचों इंद्रियों के विषयों को भोग रहा है बाकायदे जैसा उसको जितना आवश्यक है, लेकिन उसका कॉन्सेप्ट क्लियर है कि ये ठीक नहीं है, मुझे ये नहीं चाहिए है, मुझे तो मजबूरी में इनको लेना पड़ रहा है, मेरा ये स्वभाव नहीं है, ऐसा जानते हुए ग्रहण कर रहा है, तो वो सम्यक दृष्टि। इसलिए कहना पड़ा इन युत विषयन में, जो अकेले विषयन में प्रवृत्त नहीं, मैं ये कहना चाह रहा हूं इन युत इस प्रकार के ज्ञान और दर्शन के साथ जो विषयों में प्रवृत्ति है उसका नाम मिथ्याचार्य ऐसा। ये सब मिथ्यात्व इत्यादि जो हैं ये बाई वर्थ हैं हमारे लिए। और उसके बाद अपन ने पढ़ा था कि जो कुगुरु कुदेव और कुशास्त्र या कुधर्म हैं उनके ऊपर विश्वास रखना, उन पर श्रद्धा करना, ये सब जो है ग्रहित मिथ्यात्व है। और शार्ट में कुगुरु किसे कहेंगे? गुरु की रागी द्वेषी जो है, भीतर में उनके राग है, बाहर में सामग्री इकट्ठी करके रखे हुए हैं, और उसके अलावा अपने आप को नाना प्रकार के वेश बना लेते हैं, अपने आप को महात्मा मानते हैं, और हाँ
वो तो साथ रखते हैं, त्रिशूल रखते हैं,
धन अंबरते सने इतना ले, वो तो देव है, अभी देव
गुरु कुछ महात्मा भी रखते हैं त्रिशूल,
हाँ वो पर इसमें वो उनके सब आ जाएगा लिंग में, मतलब वेश में नाना प्रकार के वेश बना लेना, अपने को महात्मा कहलवाना, और धन पैसा इत्यादि सब अपने पास रखना, भीतर में राग द्वेष भी करना, ये सब जो है कुगुरु का लक्षण है। कुदेव कौन है? भीतर में तो जिनका हृदय राग द्वेष से मलिन है, और बाहर में त्रिशूल गदा इत्यादि जो भी रखते हैं वो सब इन चिन्हों के द्वारा जो पहचाने जाते हैं उनको कुदेव कहते हैं। और कुशास्त्र कौन से हैं? जिनमें हाँ जिनमें राग द्वेष, अंतरंग में राग द्वेष रूप भाव हिंसा, और बहिरंग में जीवों के मारने वाली हिंसा को स्थान दिया गया है, अर्थात मारने में कोई दोष नहीं। जैसे कई लोग कहते हैं कि हवन करने के लिए, यज्ञ करने के लिए पशुओं को मारो, इसमें धर्म है, ऐसा मान लेते हैं, तो वो सब क्या हो जाएगा? वो कुधर्म हो जाएगा इस तरह से। ये अपन ने यहाँ तक पढ़ लिया था, फिर आपके ग्रहित मिथ्यात्व तो हो गया, अब ग्रहित अज्ञान क्या है, ग्रहित मिथ्या ज्ञान या ग्रहित मिथ्या ज्ञान क्या क्या है ये बताइए, ये भी कल पढ़ चुके थे अपन, नहीं ग्रहित ग्रहित मिथ्या ज्ञान, ये तो ग्रहित मिथ्या दर्शन हो गया कि कुदेव कुगुरु कुशास्त्र पर हमने श्रद्धा कर ली, ठीक है ये हमारा श्रद्धान ग्रहित मिथ्यात्व हो गया, अब ग्रहित अज्ञान कौन सा कहलाएगा, एकांतवाद दूषित समस्त विषयाधिक पोषक अप्रशस्त रागी कुमति निकट कृत्सुताभ्यास ते हैं, मैंने देखो जो गड़बड़ ज्ञान है उस ज्ञान को आप पढ़ रहे हो तो अल्टीमेटली वैसे ही तो आपकी दृष्टि गड़बड़ थी और गड़बड़ होगी कि नहीं, सीधा एक तो वैसे ही अज्ञानता है और अज्ञानता और अपन ने बाहर से भी ऐसे ऐसे ग्रहण कर ली तो ये ग्रहण की हुई है ग्रहित है, तो रागी दोष देशी के द्वारा या जो मिथ्या मान्यताएं हैं उन मिथ्या मान्यताओं को इंटरप्रेट करने वाले ग्रंथों को पढ़ना और जिसमें कि किसी एक पक्ष को ही महत्व दिया हो दूसरे पक्ष का निषेध किया हो ऐसे एकांतवाद से दूषित और जिसमें कि विषय कषायों का ही पोषण होता हो वितरागता की कोई बात ही ना हो ऐसे शास्त्र का अभ्यास करना, इससे क्या होगा अज्ञानता बढ़ेगी, ये ग्रहण की जाने वाली बाहर से अडॉप्टेड है ये नॉलेज, ऐसी नॉलेज गेन करी जिससे कि हमारी दृष्टि और भ्रमित हो गई उसी को कहेंगे अज्ञान वो ग्रहित मिथ्या ज्ञान, तो हमारा धर्म क्या है वीतराग धर्म है अनेकांतात्मक है, हैं और वीतरागी के द्वारा कहा हुआ है, तो तीन बातें हमें ध्यान रखनी है कि वीतरागी के द्वारा कहा हो, अगर रागी के द्वारा कहा गया तो ठीक नहीं, वीतरागी के द्वारा तो कहा है लेकिन जिसमें वीतरागता का प्ररूपण हो और अगर राग का प्ररूपण है तो भी गलत है और सब कुछ है और सब कुछ होते हुए भी अगर मल्टी डायमेंशनल नहीं है अगर आपने हर पहलू को ठीक ठीक प्ररूपण नहीं किया है तो वो भी ये क्रम से है, सबसे पहले तो वीतरागी के द्वारा कहा हो लेकिन वीतरागी के द्वारा तो कहा है पर राग द्वेष से युक्त कह दिया अगर तो कहते वो भी गड़बड़, और ठीक है राग द्वेष को कम करने वाला है पर बिल्कुल एकदम एकांत है तो वो भी गलत, इस तरह से तीन चीजें होना चाहिए, वीतरागी के द्वारा कहा हुआ वीतरागता का पोषण करने वाला और अनेकांतात्मक होना चाहिए, और अगर इससे विपरीत है तो वो सब श्रुताभ्यास है, वो सब क्या श्रुताभ्यास नहीं ऐसा श्रुताभ्यास मिथ्या है ऐसा। अब एक और रह गया था, इसी तरह जब हम व्रत नियम संयम करते हैं या विषयों का जो हम अभी अपन चर्चा कर रहे थे ना कि अपन ने मान लो पंचेंद्री के विषयों को छोड़ा भी तो काहे के लिए किया कि मुझे लोग अच्छा मानेंगे मेरी भारी प्रशंसा होगी मेरा यश फैलेगा कि भैया ये तो बहुत उपवास करते हैं बहुत इनने अपने व्रत नियम संयम भारी करके रखे हैं, अच्छा और कई बार लोग बताने भी लगते हैं कि मैं ये करता हूँ मैं ये करता हूँ मैं ये करता हूँ, तो उसमें ऐसा नहीं लगने लगता आपको कि ये प्रदर्शन तो नहीं हो रहा है चार लोगों के सामने, जो करता है वो कहता नहीं है वो कहता हाँ करता हूँ दिखाने के लिए, खोरी मेरे अपने कल्याण के लिए करता हूँ, मैंने अगर कोई विष छोड़ दिया है तो काय के लिए कि मैं मर रहा था विष खा करके इसलिए मैंने विष छोड़ दिया है, एक जगह तो बहुत अच्छा उदाहरण दिया है कि कोई अपने घर का कचरा बाहर फेंकने जाए तो बाजू वाले से छुपा के फेंकता है बता के नहीं फेंकता कि जो फेंक रहे हम कचरा, तो वो कहा कि इतना कचरा इनके घर में था तो ये कचरा फेंकने जैसा ही है लेकिन मैं छुपा के ना फेंक के अपने कचरा फेंकने को भी एडवर्टाइज करता हूँ, मैंने इतना त्याग किया मैंने इतना इतनी चीजों को ये सब जो अब आगे की लाइन कह रहे हैं जो क्या लाभ पूजा दिचा धरिकरण विविध विध देह ला, अपने शरीर को बहुत प्रकार की तपस्या में लगाकर और शरीर को कष्ट में डालता है काहे के लिए, क्या दृष्टिकोण क्या है, दृष्टिकोण है ख्याति मिलेगी पूजा मिलेगी और यश मिले, इन सब चीजों के को दृष्टिकोण में रख करके जो तपस्या की जाती जो आचरण का पालन किया जाता वो सब भी हमारे यहाँ पर मिथ्या चारित्र कहा गया है, आत्म अनात्म के ज्ञानहीन, सीधी बात यह है कि जिसको आत्मा और अनात्मा अर्थात अजीब जिसे जीव और अजीब के बारे में कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है वो व्यक्ति जितना भी करेगा वो सब शरीर के लिए कष्ट देने वाली है, आत्मा का उससे उत्थान नहीं होगा, जो आत्म उत्थान की दृष्टिकोण रख करके शरीर को कष्ट दिया जाता है वो तो फिर भी ठीक है, लेकिन जो आत्म उत्थान की बात ही नहीं है, जिसमें ख्याति पूजा लाभ की बात है और फिर शरीर को कष्ट में रखा जाता, तो कहते वो शारीरिक कष्ट है, उससे कुछ नहीं होने वाला। मेरे ख्याल से एकदम स्पष्ट है कि अगर मैं आत्महित के लिए, अपने आत्म सुख के लिए शरीर को कोई कष्ट देता भी हूँ व्रत नियम संयम पालन करके, तो वो मेरा तप फिर भी ठीक है, लेकिन यदि मैं अपने भीतर ये भावना रखता हूँ कि मुझे इससे और अधिक पंचेंद्रिय के विषय मिलेंगे या यश ख्याति मिलेगी और तब मैं शरीर को कष्ट में डालता हूँ, तो वाकई शरीर को ही कष्ट में डालना है, उससे आत्मा वात्मा का कुछ हित नहीं होने वाला। ये उसका हाँ बस इतना ही है, कर्मों की निर्जरा ही हमारा उद्देश्य होना चाहिए। ते सब मिथ्या चारित्र त्याग, अब आत्म के हित पंथ लाग, जग जाल भ्रमण को देहु त्याग, अब दौलत निज आत्म सुपाग। बात ये पूरा समापन कर दिया उन्होंने इस तरह से, इस सब मिथ्या आचरण को छोड़ो और आत्मा का जिसमें हित है उस मार्ग पर लगो, क्योंकि ये सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र तो आत्मा के हित का मार्ग है, पंथ मतलब मार्ग, और उस मार्ग में लगो और इस सब मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या आचरण को छोड़ो। इसी से क्या होगा, जग जाल भ्रमण को देहु त्याग, और ये तीनों को छोड़ दोगे, यही अज्ञानता है, इस अज्ञानता को छोड़ दोगे तो तुम्हारा संसार का भ्रमण मिट जाएगा। हे दौलत राम, अपने को संबोधित कर रहे हैं, उसकी जगह अपने को रख लेंगे क्या, कि निज आत्म सुपाग, अब तुम अपने आत्मा में सुपाग अर्थात लीन होने की कोशिश करो। ये इतना जो है दूसरी ढाल में उपदेश दे दिया, बस दो ही रखें कि तीसरी कर दें, आज तो रिवाइज हुई है बहुत सारी आपकी एब्सेंट, ठीक है। अरे वाह, आपका दूसरा स्वार्थ दिख रहा है उसमें।
साथ छोड़
दिया, तो फिर कल क्या करेंगे अपन, शुरू में बैठ करके यही तो करेंगे। आज तो अभी जल्दी से बन जाए, कल तक याद रहना चाहिए सोच करके कि दूसरी ढाल का क्या हुआ, इसका क्रीम निकाल के कोई पूछे तो क्या।
महाराज जी ऐसा साधन
25 दिसंबर का प्रवचन शुरू होता है,
तो इसमें त्रस्त पर्याय की इम्पोर्टेंस क्यों? क्योंकि त्रस्त पर्याय एक बहुत थोड़े से टाइम के लिए मिलती है। एक इंद्री में तो हम अनादि काल से हैं और अनंत काल तक भी रहे हैं तो सुविधा है, लेकिन त्रस्त पर्याय का नियम है कि अगर आपको एक बार मिलेगी और आपने उसमें अपना कल्याण नहीं किया तो वो आपसे छुड़ा ली जाएगी, 2000 सागर के लिए मिलेगी, इसका इतना सा ही टाइम। और उस 2000 सागर में भी दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री, पंच इंद्री, संगी भी और असंगी भी, और उसमें देव भी, नारकी भी और मनुष्य भी, तिरंच भी, सब में आप घूम फिर के आ सकते हैं, इतनी आपको सुविधा है, लेकिन 2000 सागर के बीच में, और उस बीच में आपको अपना कल्याण करना तो मोक्ष ले जाइए, नहीं तो आप फिर भाई वापस आइए वहीं पर, फिर अनंत काल के लिए फिर उसी निबोध में। तो जैसे कि किसी के हाथ में बहुत मुश्किल से चिंतामणि रतन रख दिया गया और एक दिन जो है उसको नींद आ रही थी और कौआ ऊपर बैठा था, वो बहुत उधम कर रहा था, तो और दूसरी चीज हाथ में नहीं आई, उसी चिंतामणि से उसने फेंक करके कौए को उड़ा दिया, और वो चिंतामणि बाजू में था कहते समुद्र, तो उसमें जाकर के गिरी। अब इसको बाद को खबर आई कि अरे वो तो मैंने चिंतामणि से उड़ा दिया, उसको तभी देखता हूं, तो लेकिन वो तो समुद्र में डूब गई है। तो चिंतामणि अगर एक बार समुद्र में डूब गई है तो आप उसको खोजिएगा, फिर मिलेगी। मतलब 2000 सागर अनंत तो हो गया निगोद, और उसमें से 2000 सागर इतना छोटे से समय के लिए मिली थी, और फिर अगर आपने उसको वेस्ट कर दिया तो फिर उसी में अपन फिर से उतना ही हाँ परिभ्रमण करके फिर बाद को वो 2000 सागर पा पाएंगे, फिर कोई परिणाम करेंगे तब। इसलिए उसको बस वही पर्याय है अपने पास करने वाली। उत्तरस पर्याय में भी मैंने ऐसा है कि दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री और असंगी पंचेंद्री, इसका समय बहुत है। जो संगी पंचेंद्री है जिसमें हम अपना कल्याण करते हैं वो टाइम तो बहुत छोटा है। 2000 सागर में से मुश्किल से मैंने क्या कहें उसको कि 99% तो निकल गया और 1% समय एक वर्ष बचा है, मान लो उतना है अपने पास संगी पंचेंद्री, सिर्फ 48 भाव मिलते हैं मनुष्य के। और उसमें मनुष्य में भी 48 भाव मिलेंगे तो 16 16 16 तीनों वेदों के मिलेंगे, तो उसमें भी 16 भाव मिलेंगे पुरुष के जिसमें से हम मोक्ष पा सकते हैं 48 में से भी। तो बताइए 16 का टाइम कितना छोटा सा होगा, 16 भाव पाना है आपके लिए मनुष्य के। और एक मनुष्य जो है मैक्सिमम अगर होगा तो कितना आयु का हो सकता, तो कहते एक कोटि पूर्व की आयु का हो सकता मैक्सिमम, इतना मैंने 16 कोटि पूर्व इतनी आयु, कहां सागरों पर्यंत और कहां इतना सा समय हमें मिलने वाला है अपने आत्म कल्याण के। और किसी के अगर 16 भाव 60 साल के हुए तो कितने से साल भी बताए, तो कहां अनंत समय और कहां इतना सा समय। इसलिए कहते कि बहुत दुर्लभ, एक इंद्री से दो इंद्री होना, दो इंद्री से तीन इंद्री, चार इंद्री, संघी पंचेंद्री होना तो बहुत ही दुर्लभ। जैसे अपन ने ये कैलकुलेशन किया कि उतने सारे समय में से कितने समय के लिए मिला, और उसमें भी अगर अपन ने कुछ इस तरह कर लिया तो ये कोई जरूरी नहीं है कि 2000 सागर आपके पूरे होने पर ही आपने गोद जाएंगे। उसमें आपने अगर ऐसी कोई गड़बड़ कर ली तो आपको बीच में छोड़ा ही लाई जाएगी वो, कि आपकी गई तरस पर आए, अब फिर चलो निगोद में। आत्म कल्याण तो दूर रहा, अगर अभी अभी तरस पर आए पाई थी और उसमें कोई ऐसी भारी भूल कर ली कि निगोद में जाना पड़ा एक इंद्री में, जैसे कि अब लिखा वही देव पर्याय, कितनी मुश्किल से देव पर्याय पाई होगी उसने, कितना यात्रा करने के बाद और वहां से संक्लेश करके और मरा तो एक इंद्री में हुआ। अब बताइएगा एक इंद्री, अब वो एक इंद्री से गिरने में तो आसानी से गिर गया, लेकिन अब इंप्रूव करेगा तो एक इंद्री से पंचेंद्री पहुंचने में कितना इंप्रूव करना पड़ेगा। इसलिए दुर्लभता है, चिंतामणि रत्न जैसे बहुत दुर्लभता से मिलता है उसी तरह तरस पर्याय बहुत दुर्लभता से। तरस पर्याय में भी फिर कहेंगे कि अब तरस में भी पंचेंद्री होना बहुत मुश्किल, दो इंद्री से। इसलिए और दुर्लभ है निगोद से थावर अरुदश गति पाना, नरकाया को सुरपति तरसे सो दुर्लभ प्राणी। दुर्लभ सम्यक उत्तम देश सुसंगति दुर्लभ श्रावक कुल पाना, दुर्लभ संयम पंचम गुण थान, ये सब दुर्लभता है। और फिर आखिरी में कहते हैं कि आराधन दीक्षा का धरना, दुर्लभ मुनिवर के व्रत पालन शुद्ध भाव कर। मुनिवर का व्रत पालन भी दुर्लभ नहीं है, लेकिन उससे ज्यादा दुर्लभ शुद्ध भाव करना। और फिर दुर्लभ से दुर्लभ है चेतन बोधि ज्ञान पाकर केवल ज्ञान नहीं फिर इस भाव में, तो ये क्रम क्रम से दुर्लभता है। जबकि ऐसा लगता है कि ठीक तो है त्रस पर्याय दुर्लभ थी हमने पाली, लेकिन अभी और बहुत सारी केवल ज्ञान है सबसे बोधि दुर्लभ, जिसको अपन कहते हैं कि सबसे दुर्लभ वो, पर इसके इसके पहले की स्टेजेस भी दुर्लभ है, ये वहां शो करना चाह रहे हैं। और हाँ पहले रिवाइज करते हैं दूसरे दो ढाल का कि क्या अपन ने समझा।
महाराज जी जो वो प्योर पोटेंशियलिटी की बात कर रहा है वो दूसरी तरफ में ले जाना चाहता हूँ, तो प्योर पोटेंशियलिटी क्या मतलब वो कर, तो केवल वही रहा है आत्मा की बात की, आत्मा इतनी पावरफुल है और उसमें इतनी अनंत शक्ति है, तो वो लेकिन उसको शब्द वो दे रहा है प्योर पोटेंशियलिटी लॉ फर्स्ट लॉ प्योर पोटेंशियलिटी, लेकिन कर वो बात वही रहा है कि आत्मा में इतनी शक्ति है सब पूरा ज्ञान से वो है लेकिन आवरण से ढकी हुई, मतलब ये सब बातें वो कह रहा है, तो अगर आप ध्यान तब ये सब करेंगे तो आपको यू कैन हैव व्हाटएवर यू वांट वेदर मटेरियल गेन्स और स्पिरिचुअल गेन्स, मतलब एक तरह से वो सेलिब्रेशन की बात कर रहा है, तो प्योर पोटेंशियलिटी लेकिन सब उसने यूज किया है, तो मेरे को समझ नहीं आ रहा कि उसके इक्विवेलेंट वर्ड क्या हो सकता है प्योर पोटेंशियलिटी, मैंने है वो जैनिज्म के ऊपर पूरी किताब मैंने आज दूसरी बात पढ़ी,
तो अनंत दर्शन अनंत ज्ञान अनंत अनंत चतुष्ट ही है प्योर पोटेंशियलिटी,
प्योर पोटेंशियलिटी की बात
अनंत बल कह लीजिएगा उसको, चारों अनंत चतुष्टय जो है वही
वही प्योर पोटेंशियलिटी का बात कर रहा है, बट वो है महाराज जी पूरी जैन धर्म के सिद्धांत पे आधारित है वो,
मुझे इसलिए वहाँ नलिन के शास्त्री हैं उन्होंने सजेस्ट किया था कि आप स्पिरिचुअल लाभ सक्सेस ऐसा कुछ है क्या, सेवन स्पिरिचुअल लॉज फॉर सक्सेस दीपक चोपड़ा की, वो पढ़िएगा पूरा जैन धर्म है और पूछो जल्दी से, नहीं तो फिर हम पूछ रहे हैं सार वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार नमः शिवाय समय। पहली ढाल में हमने पहली ढाल को लिखने का उद्देश्य क्या है या उससे हमको क्या शिक्षा मिली पहली ढाल से, रोज अपन रिवाइज करें, क्या शिक्षा मिली पहली ढाल से हमें?
अज्ञानता के कारण ही मनुष्य की अज्ञानता के कारण ही चार भोग गतियों में भंग होता है
और
दुख का कारण
मनुष्य के चारों गतियों में भ्रमण का कारण उसकी अज्ञानता और चारों गतियों में भ्रमण उसके दुख का कारण। इस तरह अगर देखें तो उसकी अज्ञानता ही दुख का कारण है, ऐसे रिलेट किया उन्होंने। हर जीव सुख चाहता है लेकिन सुख का उपाय नहीं करता, सुख का उपाय इसलिए नहीं करता है क्योंकि वो अपने दुख के बारे में नहीं जानता कि वो क्यों दुखी है। तो बताते हैं कि हम अपनी अज्ञानता की वजह से दुखी हैं। कैसे दुखी? अज्ञानता की वजह से, अज्ञानता की वजह से हम भ्रमण करते हैं और भ्रमण ही दुख है मुख्य तो। और ये छोटे मोटे दुखों की चर्चा नहीं की उसमें, उसमें तो ये कहा कि जन्म मरण का बड़ा दुख है और वो जन्म मरण का कारण क्या है, तो जन्म मरण का कारण हमारी अज्ञानता। और इसका कोई पूछे कि नहीं समझ में आया तो क्या उदाहरण देंगे, उदाहरण बहुत छोटा सा है कि जैसे हम पहली कक्षा में पढ़ रहे हैं और अगर हम पहली में फेल हो जाएं तो हमें क्या पढ़ना पड़ेगा, दूसरी नहीं फिर से पहली पढ़ना पड़ेगी। इसी तरह से जो है हम इसमें जन्म मरण वाले मामले में अज्ञानी होने से हम अपने जन्म मरण से पार नहीं हो पाते हैं, इसलिए हमें फिर से जन्मना पड़ता, फिर से मरना पड़ता। यही हमारी पीड़ा का मुख्य पीड़ा का कारण है, तो वो जन्म मरण। हम और दूसरी चीजों को दुख का कारण मान लेते हैं पर मुख्य दुख का कारण हमारा जन्म मरण और जन्म मरण का कारण हमारी अज्ञानता। तो हमें ये बता दिया गया है कि हम अपनी अज्ञानता की वजह से, और फिर कौन कौन से दुख सहन करते हैं ये भी हमें डिस्क्राइब कर दिया कि चारों गतियों में हम इस तरह के दुख पाते हैं और उस दुख का कारण। मैं ये जो है मेरे ख्याल से अभी तक मैंने ऐसा नहीं सोचा था, ना मुझे किसी ने कभी बताया छेड़ाला, किसी से भी पूछ लो छेड़ाला के बारे में, मैं तो मुझे तो ये लग रहा है कि किसी की पहली बारी ढाल का उद्देश्य क्या है, वो कह देंगे चारों गतियों के दुख बताएं उसमें, तो चारों गतियों के दुख बताएं तो हम क्या करें, वो तो हम पहले से दुखी में थे और आपने और दुखी कर दिया बता करके। नहीं, हमें हमारी अज्ञानता से परिचय करवा दिया कि उस दुख का कारण हमारी अज्ञानता है। अगर चारों गतियों में दुख है तो फिर तो हम मजबूर हैं भोगने के लिए। नहीं, चारों गतियों में दुख है ही, इसके लिए हम भोगने के लिए मजबूर नहीं। अगर हम ज्ञानी हैं तो वहां रह करके भी हम उससे पार हो सकते हैं, हमारी अज्ञानता की वजह से हम दुख मिलता है। फिर दूसरी ढाल में कहते हैं कि आपने बता दिया कि हमारी अज्ञानता है, तो अज्ञानता किस तरह की है, तो कहते हैं हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, हमारा नॉलेज भी उस कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होने की वजह से हमारा नॉलेज भी गड़बड़ा गया है, हम जो जो जानते हैं वो ठीक नहीं जानते हैं, और फिर उसकी वजह से हमारा आचरण भी गड़बड़ाया हुआ है, सब गड़बड़ियां। दूसरी ढाल में सिर्फ ये बताया है कि कैसे हमारा कॉन्सेप्ट गड़बड़ हुआ और कैसे फिर हमने जो कुछ भी नॉलेज गेन की वो भी गड़बड़ हो गई और जो कुछ भी हमने एप्लीकेशन उसके किए वो सब भी गड़बड़ आ गए। तो तीनों इसी को बोलते हैं मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र। अब मिथ्या दर्शन किसे कहेंगे, तो कहते हैं कि जो मोक्ष मार्ग में या सुख के लिए, ऐसा मान लें जो सुख के लिए सात बातों को जैसा है वैसा श्रद्धा करना जरूरी था, हमने वैसा नहीं किया, हमने अपने से शुरू करें, हमने जो हम जीव हैं इसी पर हमारा श्रद्धान ठीक नहीं है, हम जीव का जो स्वरूप है वो ना मान करके या ही एक लाइन में क्या बोलेंगे उसको, उद्गल नभ धर्म अधर्म काल इनते न्यारी है, ताको न जान विपरीत करी करें देह में निज पिछा। मैंने जो है अपने शरीर को ही आत्मा मान लिया, ये मेरा आत्मा के बारे में कॉन्सेप्ट गड़बड़ा गया, और फिर जब मैंने शरीर को ही आत्मा मान लिया तो मैं सुखी दुखी, मैं रंग करा, फिर इस शरीर के सुख को मैंने सुख माना, इसके दुख को दुख माना, ये सुंदर है तो मैं सुंदर हो गया, ये असुंदर हुआ तो मुझे लगा मैं ही असुंदर हो गया हूं, इतना ज्यादा इंडल्स हो गया मैं शरीर में कि फिर शरीर के अलावा मुझे आत्मा की जरा भी मैंने दिमाग में चीज आती नहीं, जो जो शरीर पे घटित होता है वो मैं अपने से जोड़ लेता हूँ, ये जीव के बारे में कॉन्सेप्ट। और फिर अजीव के बारे में क्या, देखिए अगली वाली लाइन में, तन उपजत अपनी उपज जान तन न सब। फिर क्या हुआ, जीव के बारे में तो कॉन्सेप्ट गड़बड़ा ही गया, अजीव के बारे में गड़बड़ा गया, अब अजीव की उत्पत्ति हुई है और मैं सोचता हूँ मैं उत्पन्न हो गया, वो शरीर मर रहा है मैं सोचता हूँ मैं ही मर गया, अब इस तरह से मैंने अजीव के बारे में भ्रम कर लिया, एक तो जीव के बारे में भ्रम किया था, दूसरा अजीव के बारे में, जबकि अजीव का स्वभाव जन्म मरण का नहीं है। अजीव तो जो है अपने चार क्वालिटी है उसकी, रूप रस गंध और स्पर्श, इन द्वारा जाना जाता है। उसका जन्म मरण तो उत्पाद व्यय होता है, लेकिन मैंने उसके उपजने से अपने को उपजना मान लिया। इस तरह से अजीव तत्व के बारे में भी मेरा कॉन्सेप्ट गड़बड़ा गया। और जो राग द्वेष इत्यादि मेरे लिए निरंतर दुखदायी है और नए नए कर्म मेरे अंदर आते हैं, उन्हीं राग द्वेष को मैंने अच्छा माना और उसी को करता चला जा रहा हूँ। कल अपन ने एक बात जो विशेष समझी थी कि राग द्वेष कैसे दुख के कारण हो जाते हैं। अपन खुद ही देखें कि जब हम किसी व्यक्ति से प्रेम से बोलते हैं तो हमें थोड़ा सा सुख मिलता है, और हम उससे उसी व्यक्ति से जो है बुरे से बोलते हैं तो हमको दुख मिलता है। हम जान रहे हैं कि दोनों ही चीजें ठीक नहीं है, फिर भी हम उस चीज को करते जा रहे हैं। ये आश्रव तत्व के बारे में भूल है। दोनों स्थितियों में, जब मैं हर्ष कर रहा हूँ तब भी मुझे, और जब मैं विषाद कर रहा हूँ तब भी मुझे, दोनों स्थितियों में कर्म आने वाले हैं, और ये आश्रव तत्व के बारे में भूल हो गई। फिर शुभ अशुभ बंद के फल मझार, अब जब मैंने आश्रव कर लिया है तो मेरे साथ वो सारे कर्म बंद गए हैं। अब वो कर्म जब उदय में आते हैं तो मुझे फिर अच्छा बुरा फल देते हैं, तो अच्छे को मैं हर्ष से भोगता हूँ और बुरे को मैं विषाद से भोगता हूँ, तो फिर नए कर्म बांधता हूँ। ये बंद तत्व के बारे में मेरी भूल हो गई। फिर आत्महित हेतु विराग ज्ञान ते लखे आपको कष्ट ज्ञान, अब जिन वजहों से मेरे कर्म आते हैं उससे विपरीत जब कोई राग द्वेष से आते हैं तो मैंने सोचा कि मैं वैराग को अंगीकार करूं, तो वैराग को तो मैं दुखदायी मानता हूं। कोई व्यक्ति अगर कुछ चीजों से विरक्त हो जाता है तो कहते हैं अरे इनको ये चीजें जुटती नहीं, यहां के संसार के सुख छोड़ रहे हैं और इतनी तकलीफ भोग रहे हैं ये, तो हमें उसकी वो किसी का उपवास करना अगर हमें तकलीफदायक लगता है तो समझना कि हमारे संवर तत्व का कॉन्सेप्ट गड़बड़ है। वो तो कर रहा है संवर और हमें लग रही है तकलीफ। आत्महित हेतु विराग ज्ञान ते लखें आपकों कष्ट दान, जिन जिन चीजों में हम, और फिर रोके न चाह निज शक्ति खोए, और उसके बाद संवर के बाद निर्जरा, मैंने अपनी इच्छाओं को बढ़ाना शुरू किया। रोका तो है ही नहीं, रोकने से इच्छा